اب اس کے بعد تزکیے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فزیکل نیڈز میں سے ایک نیڈ کو کس طرح سے پیش کیا کہ جب ایمان کی دولت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، لغو سے وہ بچ جاتا ہے، کوئی ایسی محفل جہاں بیکار کام کیے جائیں اس میں نہیں رہتا، تو پھر اس کا ایسا خوبصورت تزکیہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، تو والذین هم لفروجهم حافظون، تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ لغو سے آنکھیں بند کی تو شرمگاہ محفوظ ہو گئی. آج کے دور کے فتنے دیکھ لیجئے، بے حیائی کے، زنا کے، ہومو سیکشولیٹی کے، لیزبینز کے، یہ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ یا نگاہ اٹھتی ہے یا کان سنتے ہیں گندی باتیں، گندی تصویریں دیکھیں، گندی باتیں سنی، دل میں خیال آ گئے تو کہا کہ ایسے لوگ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت دو طرح سے ہوگی. نمبر ایک، اس کو چھپانا، ستر کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے کپڑے نہیں پہنتے کہ جسم کا ایک ایک ابھار دکھے اور ایک ایک کٹ دکھے. ان کے لباس اتنے ٹائٹ نہیں ہوتے کہ راہ چلتوں کی نظر ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ پڑے. اور یاد رکھیے، جس طرح عورتوں کے لیے ستر ہے، اسی طرح مردوں کا بھی ستر ہے. ایسی ٹائٹ پینٹس اور جینز اور ایسے ڈریسز کہ جس میں مردوں کے بھی فگر نہ چھپیں، وہ بھی لباس غیر شرعی لباس ہیں، ڈھیلے ڈھالے نرم لباس. دوسرا معنی شرمگاہ کی حفاظت کا ہے، اس کو زنا سے بچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم کے ہر عضو کو ایک خاص مقصد دیا ہے، اسی طرح شرمگاہ کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے. سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں ہا ہی ہو کی بات نہیں ہے. کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان چکھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نسل کو بڑھانے کا یہ انتظام کر دیا. شیطان نے اس کو اتنا ابھارا کہ سب سے گندی چیز کو سب سے زیادہ ابھار دیا، اور وہ چیزیں جو اس کے راستے میں مددگار ہوں اس کو بھی سجا دیا. مثلا آپ دیکھیے، آپ کو اکثر فوٹوگرافی میں آنکھوں کی تصویریں بہت دکھیں گی، کہیں شرابی آنکھیں، کہیں نشیلی آنکھیں. کبھی کسی نے جسم کے اندر کے اعضاء کی بات کیوں نہیں کی؟ گردے، پھپھڑے نہیں نظر آتے نا. لیکن شیطان انسان کو اس طرح زنا کی طرف لے آتا ہے کہ وہ پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتے. ہاں، اس سے ایک راستہ ہے، اور وہ کیا؟ آیت 6 میں الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یعنی اللہ نے شوہر بیوی کا جو جائز تعلق رکھا ہے وہ قائم کرتے ہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا پھر وہ جو ان کے زیر دست لونڈی ہیں. یہ اس دور کی بات تھی جب لونڈیزم تھا، اس پہ بات بہت ڈیٹیل سے ہو چکی پانچویں پارے میں. آج یہ سلسلہ نہیں ہے، کل پھر بھی شروع ہو سکتا ہے. یعنی جب ایک بیوی جو سسر کے ہاتھوں سے اس کے نکاح میں آتی ہے، یا لونڈی جو امام وقت کی طرف سے اس کو ہبا کی جاتی ہے، ان دونوں کے ساتھ تعلق کر لیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. ملومین ملوم کی جمع ہے، پیچھے پڑ چکے سورت مائدہ میں، وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہی لفظ ہے ادھر بھی، لوم سے ہی یہ لفظ ہے، یعنی ملامت کرنا، کیسے لوگوں کو پھر برا نہ کہو. پیچھے تزکیے کی بات ہوئی تو یہاں شرمگاہوں کے تزکیے کی بات کر دی. اور جائز تسکین کے صرف یہی دو راستے ہیں. یاد رکھیے کہ اسلام میں نکاح پسندیدہ بھی ہے اور بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے ان نکاح من سنتی، اللہ کے نبی کی روایت ہے، پیش کر دیا کہ نکاح کرنا چاہیے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن نکاح کو کسی شرط کے ساتھ یا وقت کے ساتھ کر دینا، وہ بھی فمن ابتغى وراء ذلك، جو کچھ اس کے سوا چاہیں، فاولائکہم العادون، تو وہی حدوں سے گزرنے والے ہیں. اب یہ جو حد سے بڑھنا، یہ کیا ہے؟ اس میں دو تین مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، کچھ وقت کی قید رکھ کر شادی کرنا، عربی میں اس کو نکاح متا کہتے ہیں. متا مثلا کوئی 3 مہینے کے ویزے پہ انگلینڈ میں آیا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں یہاں اکیلا ہوں، میں شادی کر لیتا ہوں کسی عورت سے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ شادی 3 مہینے تک رہے گی، جس دن میں لندن سے باہر جاؤں گا تیرا میرا واسطہ ختم. اس کو نکاح متا کہتے ہیں. اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورت نساء میں، نکاح کی شرائط میں ایک شرط کیا ہے؟ کہ گھر بسایا جائے، گھر توڑا نہ جائے. سورہ معارج آیت 29-30 میں بھی اسی قسم کی باتیں، ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں فمن ابتغى وراء میں کیا آتا ہے؟ زنا، مرد کا عورت کے ساتھ زنا کرنا. تیسری چیز آتی عمل لوط، مرد کا مرد سے زنا. اور اسی طرح اور بھی آج کے دور میں اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے لیزبینز ہونا، اسی طرح خود سے لذت حاصل کرنا. بعض دفعہ شادی جب نہیں ہوتی یا مرد بیوی الگ ہیں، تو کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس کو یہ کہہ کر جائز قرار دیا جاتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں، हमारा बस नहीं और हम कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करें, तो इस्लाम ने इसको भी फमन इब्तगा वरा ज़ालिकुम में लिया। इस पे बहुत डिटेल से अब्दुल्ला बिन बास के फतावा मौजूद हैं। फी समाना यंग्स के अंदर ये चीज़ें बहुत आम हो गई गंदगी को देखकर, तो इसकी कतअन जायज़ नहीं है, रुख्सत नहीं। अल्लाह के नबी एक मरतबा जवानों के गिरोह के पास से गुजरे और आपने उनको कहा कि निकाह करो, और अगर तुम में से कोई निकाह की रग़बत रखता हो और निकाह ना हो, हर एक का होता भी नहीं है, और हो जाए तो भी हर वक्त इंसान अपनी ख्वाहिशात तो नहीं पूरी कर सकता, तो फरमाया फिर रोज़े रखो और निगाहों को झुकाओ, ये तुम्हें खुद पर काबू पाने में मदद देंगे। रिवायत में आता है कि 7 किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, और ना इनको पाक करेगा, और ना इन्हें आलिमों के साथ जमा करेगा, और इन्हें सबसे पहले जहन्नुम में जाने वालों के साथ जहन्नुम में दाखिल करेगा। ये और बात है कि वो तौबा कर ले। तौबा करने वालों पर अल्लाह ताला मेहरबानी से रुजू फरमाता है, तो उनमें से एक बंदा वो है जो हाथ से निकाह करे, यानी मुराद है कि खुद से खुद को रिलैक्स करे, और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक इस वक्त हमारे मौजू से नहीं है। बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ने हर काम को एक जायज़ तरीके से करना तो सही रखा, और जब इससे दूर हटते हैं तो फिर इंसान उससे बहुत ही दूर हो जाता है। ये सारी चीज़ें करके अल्लाह ताला ने फरमा दिया वल्लज़ी नहुम ली अमानातिहिम वाहदीम राउन। ये आयत नंबर 7 से पहले एक ब्रैकेट लगाइए। जितनी भी चीज़ें हुई ये इनफरादियत के साथ थी, पर्सनल लेवल की इस्लाह थी, और आज के दौर में भी तज़किया का यही तरीका होगा। आप पहले अपनी ज़ाती आदात ठीक करें। आप देखें नमाज आपकी अपना मसला है, लफ्ज़ से बचना आपका इशू है, और जो कुछ भी हम पढ़ चुके, अपने आप को पाक रखना ये सब आपका इशू है। अब जब ये सब कुछ कर चुके, हर चीज़ को अपने आप को अपने रिलैक्स कर दिया, अब आगे आयत नंबर 8 से फिर आखिर तक जहाँ ये टॉपिक चलेगा, ये इज्तमाई मामलात हैं। गोया के किसी सोसाइटी की इस्लाह से पहले फ़र्द की इस्लाह लाजिम है। देखिए कि कोई एक गेम है तो उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक की इस्लाह हो जाएगी तो पूरा बोर्ड ठीक हो जाएगा। दुनिया के नक्शे पे बहस करने से पहले अपनी ज़ात का नक्शा ठीक कर लो तो बाकी सारे लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम अपने आप को फितरत का आदी रखो और अपने आप को हलाल तरीकों पर रखो, फिर वल्लज़ीनहुम लियमानातिहिम वाहदीहिम राउन, और जो लोग अपनी अमानतों और अपने अहदों की हिफाजत करते हैं। अब ये जो हिस्सा है ना आयत नंबर 8 का, इसका ताल्लुक इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी के साथ है। अब इसके ऊपर आप फिर देख लीजिए, अमानातिहिम अमानतुन की जमा अमन से। अमन क्या होता है? अमीना बी जब होता है ना तो एतबार करना। आप अपनी अमानत किसके पास ठहराते हैं? जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया, अल्लाह की ज़ात ने हमें मुख्तलिफ सलाहियतें दी, वो अमानत है, वक्त अमानत है, और साथ ही अहद भी कर लें बात तो अल्लाह और बंदे के अहद है, अल्लाह और अल्लाह का अहद है। इन आयतों पे पीछे बात हो चुकी है ना कि किस तरह से अल्लाह ताला अमानतों पे बात कराते हैं। असल में सूरत निसा में हमने इस पे डिटेल से बात की थी, जहाँ ये आया था कि अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, तो सारे ओहदे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमानत भी हैं और अहद भी हैं। कोई बात किसी की किसी से कर देना, ये वो चीज़ है जिसको इंसान अपने हाथ से ज़िम्मे लेता है। कहते हैं कि अमानत हर किस्म की जिम्मेदारी जो इंसान अपने सर ले लेता है, चाहे गुफ्तार से हो या किरदार से हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट्स, हमने अपने आप से कुछ की? हमने और किसी से कभी की? हमने अपने पढ़ने से कुछ की? हमने अपने सिस्टम के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ ली? हर बंदा अपने ऊपर ले और देखे। और ये जो लफ्ज़ है ना राउन, राई की जमा, शेफर्ड, चरवाहा, बकरियों को चराने वाला। हमारा वक्त अमानत, हमारा जिस्म अमानत, इसीलिए खुदकुशी भी हराम है। खुद को अजियत देना इस्लाम में नाजायज़ है। ऐसे तमाम काम करना जिससे जिस्म के अंदर शैतान का गलबा आए, ये भी खयानत है। रिस्के हराम खाना और खिलाना, पेट में डालना, ये खयानत है। बच्चे अमानत हैं, बच्चों की गलत तरबियत करना खयानत है। कोई ओहदा, कोई जिम्मेदारी, कोई रैंक लेना, फिर उसके तकाजे ना पूरा करना। और सबसे बड़ी बात है ज़ाती मसलों में पड़ के, छोटा सा मसला आपको इतना बड़ा लगे और बड़े बड़े मसले उसके पीछे छुप जाएं, ये बहुत बड़ी इज्तमाई खयानत है। आज हम मुसलमानों की नाकामी में एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम ज़ाती अहदों को निभाते हैं, हम अपनी ज़ाती बातों को समझते हैं, लेकिन इज्तमाई चीज़ों पर हम नहीं आते। तालिबिल बहसियत तालिबिल में एक जिम्मेदार है, उस्ताद बहसियत उस्ताद एक जिम्मेदार है, माँ बाप, बच्चे, हर जगह आप देखें हम रिश्तों की डोरियों में बंधे हुए हैं। नाम का तालेब इल्म बन जाना, जिम्मेदारियां ना निभाना, ओहदे लेना, जिम्मेदारी अदा ना कर पाना, ये सब चीजें इस तरह की हैं कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है कि मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, जिसमें से एक क्या है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करता है। मेरे लिए यहां तक सुनते हुए तो बंदा थक ही चुका होता है, ऐसे लगता है कि मुफलह बनना सऊबतों और मुशक्कतों का सफर है, आसान नहीं है। लोग इसको जीने को आसान कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। एक इंसान अपनी मंजिल तक तब ही पहुंच सकता है जब ये सारे मरहले तय कर ले और आखिर में कह दिया वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और जो लोग अपनी नमाजों की पूरी हिफाजत करते हैं, आगाज भी नमाज से, अहतमाम भी नमाज से, वहां खुशू था यहां हिफाजत है, और हिफाजत में उसका वक्त पे पढ़ना, उसके सुन्नतों और नवाफिल का अहतमाम करना, सुन्नत तरीके से पढ़ना, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज के मकसद पे का नजर रखना, पढ़ने के साथ साथ कायम रखना अकीम उस्सलात, यानी ऐसी सोसाइटी बनाना कि जहां नमाज का असर दिखे, गोया के ख्वाहिश ही उनमें जाती सोच थी नमाज के दौरान, और जो हाफिज़ ज़ोन में इज्तमाईयत का एक मैसेज मिलता है का ये कर लोगे तो उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो वारिस होंगे। ये क्या बात हुई, वारिस क्यों भाई, वारिस क्यों कहा गया हमें? नंबर एक, आदम और हव्वा की ही जन्नत है ये, जिसमें हमारे माँ बाप को डाला था, इसलिए अब हर इंसान जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा वो एक किस्म का वारिस है। सवाल पैदा होता है वारिस क्यों कहा गया, इसको तोहफा क्यों नहीं कह दिया गया? तो आप देखिए कि तोहफा कहा जाए तो फिर लौटाने का फिक्र होती है, कीमत से खरीदी जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, विरसे में मिली हुई चीज एक ऐसी चीज होती है कि जिसको इंसान लेता है तो फिर उसके बाद वो समझता है कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है। सवाल पैदा होता है कि अगर जन्नत विरसे में मिलनी थी तो हमारी नेकियों का क्या हुआ जो हम करते हैं जन्नत को पाने के लिए? तो इसका जवाब यह है कि हम में से किसी की नेकियां इस काबिल भी नहीं कि जन्नत में एक कोड़ा रखने के बराबर जगह भी मिल सके। ये तो अल्लाह ताला उन नेकियों को करने की हमारी टूटी-फूटी कोशिशें देखकर तोहफे में दे देगा जन्नत, और अगर कोशिश ही नहीं की होगी तो कहेगा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। फिर इसी तरह विरासत इसलिए भी कहा गया कि ये आखिर में मिलेगी, जिंदगी में विरासत नहीं है। इसी तरह वारिस कहकर बता दिया तुम्हारा अंजाम क्या होता है, आखिर तक तुम कहाँ तक जमते हो दीन पे, जिंदगी भर नेकियां करते रहे, मौत के वक्त कोई गलत काम कर दें, सारा साल मेहनत करते रहे, आखिरी दिनों में उस मेहनत को छोड़ दें, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह विरासत कहने की एक और वजह एक हदीस में हमें समझ आती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर एक का जन्नत में भी एक घर है और जहन्नम में भी एक घर है। जहन्नम में जाने वालों का घर जन्नती उसके वारिस बन जाएंगे, समझ आ रही है? खाली होगी ना, एम्प्टी हाउसेज हैं, तो दूसरे जन्नतियों को कहेगा तुम ले लो, तुम ले लो, उलाइक हुमुल वारिसून, ये वारिस बनेंगे। कब बनेंगे? जब अमल करेंगे। कद अफलहल मोमिनून से लेके अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशियून की सीढ़ियों से गुजरते हुए वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून तक, इतने काम करोगे फिर मिलेगा। अमल करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त तरीके से करो। देखिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का नाम अच्छा अमल है। किसान एक फिट की बजाय 2 फिट जमीन खोद दे तो बीज डालेगा तो जाया हो जाएगा, अपनी जमीन की जगह दूसरी जमीन पर डाल देगा तो बीज जाया हो जाएगा। तो युहाफ़िज़ून की बात करके बाहर की कैफियत और ख़ाशियून कहकर अंदर की बात कर दिया, जन्नत में जाने का प्लानर है ये, इबादत का है किस्सा, बाकी जाती जिंदगी और अंदर की सलाह, ताल्लुकात, जिम्मेदारियां, ओहदों का पास। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें बंदों के साथ भी ताल्लुक है और अल्लाह के साथ ताल्लुक है और अपने नफ्स के साथ। अगर आप इन 10 सिफात में, इन आयत में देखेंगे तो अल्लाह का ताल्लुक भी है, कद अफलहल मोमिनून में, खाशियून में, फिर बंदों के साथ बंदों के मामले भी आ गए और अपने नफ्स का हक भी है। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के साथ भी सच्चे हों, बंदों के साथ भी सच्चे हों और नफ्स के लिए भी सच्चे हों। असल बात यह है कि कामयाब होना चाहते हो। आज आप देखिए कि हमारे हालात क्या हैं। आज हमने खुद कामयाबियों को रोका हुआ है। जिस कामयाबी को पाने के लिए सुबह से घरों से निकलते हैं, शाम तक आते हैं, कभी पढ़ने, कभी सीखने, कभी कमाने, कभी उसको खर्च करने में, वही कामयाबी दिन में 5 बार मुअज्जिन की जुबान से हमारे पास आती है, हैया अलल फलाह। आ जाओ नमाज की तरह, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह। आज हमने कितने गैर हकीकी मेयार बनाए हुए हैं। शादियों के मौके पे हम क्या कामयाबियां देखते हैं और असल कामयाबी क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, 4 वजूहात से औरत के साथ निकाह होता है, उसकी खूबसूरती, उसका हसब नसब और दौलत, लेकिन तुम दीन वाली के साथ कामयाब हो जाओ। आज दीन के नाम पे भी जो दीनदारी है वो कौन सी है हमारी? अगर हम नमाज के वक्त में सोए रहे तो हमारी दीनदारी का पटारा तो फजर पे खुल जाता है ना। तो हर बंदा अपने आप को चेक करे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि कामयाब कर दे हमें, और अगर हम खुद नहीं करेंगे तो याद रखिए कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हमारा मुआशरा ऐसा बन गया, हम करेंगे? निकाह मुश्किल है और जिना आसान है। आप देख लीजिए कि इस मुआशरे में आज कामयाब होना इम्पॉसिबल है, इल्ला ये कि जिस पर अल्लाह ताला रहम कर दे। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों को हम इतना बड़ा बोझ बना लेते हैं कि जिसकी वजह से ये सारे काम छूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये मौजू पूरा होता है, जिसने हम सब को अपनी ज़ात की इस्लाह की फ़िक्र लगा दी। अगर मैं और आप इन आयात पर आज से अमल करना शुरू कर दें, पिछले 17 पारों को छोड़ दें, आज के सबक से अगर हम अपने ऊपर इसको एक चेकलिस्ट बना लें, तो इट्स नॉट टू लेट। अगरचे ये लेट है, बट इट्स नॉट टू लेट। फिक्र करने की ज़रूरत है। कोई नहीं इस पे अमल करेगा हमारे सिवा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कुरान पे, अमल ही उनका होगा जिन्होंने इन आयतों पे अमल करना है। और इन आयात के बारे में एक रिवायत आती है, तफसीर इब्ने कसीर में आती है, कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत अदन पैदा की और इसमें दरख्त वगैरह अपने हाथ से लगाए, तो इसे देखकर फरमाया, कुछ बोल, तो उसने यही आयतें तिलावत की, कद अफलहल मोमिनून, और जो कुरान में नाजिल हुई। अबू सईद कहते हैं कि इस जन्नत की एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है। फरिश्ते जब इसमें दाखिल हुए तो कहने लगे, वाह वाह, ये तो बादशाहों की जगह है। इसका गारा मुश्क का था, ये है ना कि उलाइकहुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये फिरदौस की बातें। कैसे अल्लाह ने ये खूबसूरत बनाई। हदीस में आता है कि जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि इसकी छत रहमान का अर्श है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, जिसको मिल गई उसको अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इससे पीछे दूसरी चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि वो ना दुनिया मिलती है ना कुछ और मिलता है। सूरत मरियम आयत 63 में भी आता है, तिलकल जन्नतुल्लति नूरी सुमिनी बादीना, ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं बनाते हैं। सूरत अल अराफ आयत 43 में भी आता है, और सूरह अराफ में हम पढ़ चुके हैं जन्नतियों और जहन्नमियों के मुकालमे में, कि किस तरह वहाँ हसरत होगी उन लोगों को जो वहाँ नहीं दाखिल होंगे। इसी तरह रिवायत में आता है कि जन्नत ने जब इनायतों की तिलावत की तो जनाबे बारी ताला ने फरमाया, मुझे अपनी बुजुर्गी और जलाल की कसम, तुझमें बखील हरगिज दाखिल नहीं होगा। ये भी नोट कर ले, बुखल, स्टिंजीनेस, काप। हदीस में आते इसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की, दूसरी सुर्ख याकूत की, और तीसरी सब जबरजुद की है, इसका गारा मुश्क, इसकी घास ज़ाफ़रान की है। और इस रिवायत के आखिर में आपने आता है कि हदीस बयान करके फरमाया, वमन युक़शुख नफ्सिही फ़ौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया वही कामयाब है। तो आसान नहीं है, अपने आप को लगाना पड़ता है इन्हीं चीज़ों में, फिर इंशाल्लाह आप देखें कि अल्लाह ताला कीमत बहुत प्यारी देगा हम सबको अपनी छोटी छोटी टूटी फूटी कोशिशों की। और जब ये सब कर लेंगे, जिसने ये सब कुछ कहने का हुक्म दिया उसके मुताबिक हो गए, तो अल्लाह ताला अगली आयतों में आपको मुझे हमारी ही जात पे गौर व फिक्र की दावत देते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون